अभिवादन स्वीकार कीजिए सरफिरोजी का न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में। प्रोग्राम के आज के अंक में भी होंगे देश दुनिया के समाचार, आपको बताएंगे मौसम का हाल और पलटेंगे इतिहास के पन्नों को भी, जानेंगे आज का दिन क्यों खास है, उन विशेष हस्तियों को भी याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। और प्रोग्राम के इस अंक में मेरे साथ हैं शगुन अरोड़ा।
हेलो सरफिरोजी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। एंड लिसनर्स, दिस प्रोग्राम विल बी प्रोवाइडिंग यू विद ऑल द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एंड वील टेल यू अबाउट हाउ दिस डे दैट इज 29th ऑफ जुलाई इट्स स्पेशल by delving into the history of this day, as Sarfirozi has already told you. So make sure to stick around till the end. So Sarfirozi, let's begin with the headlines first.
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। श्री मोदी ने सभी को अपने अपने राज्यों में शासन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए और कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर वितरण के लिए संदेश देने पर बल दिया। ये बात श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की दो दिवसीय बैठक में कही। बैठक में भाजपा के प्रमुख जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं बहुत सावधानी से बनाई जाती हैं और राज्यों में इनके कार्यान्वयन में छेड़छाड़ से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विकास कार्यक्रमों और अन्य प्रयासों में जनभागीदारी पर अधिक जोर देकर देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने के प्रयास करने को भी कहा।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, along with his counterparts from Japan, United States of America and Australia, will attend the Quad Foreign Ministers meeting in Tokyo today. During the meeting, the foreign ministers will take forward discussions held during the last meeting in New York in September last year and exchange views on developments in the Indo-Pacific region and review progress on Quad initiatives and working groups. The ministers will discuss regional and international issues and guide future collaboration to achieve the shared vision of a free and open Indo-Pacific region by addressing contemporary priorities of the region through delivery of public goods. Earlier today, Dr. Jaishankar met his Australian counterpart Penny Wong. He spoke about further steps to intensify India-Australia bilateral ties, including in security, trade and education. They also discussed deepening the practical cooperation across the Indo-Pacific.
शिक्षा मंत्रालय आज नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर सभागार में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की चौथी वर्षगांठ मनाएगा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम की संकल्पना एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए की गई है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनईपी 2020 के कार्यान्वयन से जुड़े अपने अनुभव साझा करेंगे। श्री प्रधान विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखने की सुविधा के लिए टीवी चैनलों सहित शिक्षा विभाग की कई महत्वपूर्ण पहलों का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें स्कूलों में सीखने की प्रक्रिया को मजेदार और तनाव मुक्त बनाने के अंतर्गत 10 बैकलेस डे का कार्यक्रम भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज से विशेष लोक अदालत सप्ताह आयोजित कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न्यायालय के समक्ष लंबित पड़े मामलों को निपटाना है। उन्होंने लोगों से लोक अदालत या जन अदालत का लाभ उठाने की अपील की। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि ये पहल विवादों को स्वेच्छा और परस्पर सहमति से निपटाने का मौका है। उन्होंने कहा कि लोक अदालतें न्याय पाने का एक कुशल और सुलभ साधन है। और भारत और सऊदी अरब ने परिशोधन, नवीकरणीय ऊर्जा और पेट्रो रसायन संयंत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने पर विचार किया है। दोनों पक्षों ने भारत सऊदी अरब उच्च स्तरीय कार्यबल की पहली बैठक में परस्पर लाभकारी ढंग से निवेश बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान बिन अब्दुल अल सऊद ने कल हुई वर्चुअल बैठक की सह अध्यक्षता की। भारत ने सऊदी अरब के $100 अरब के निवेश के लिए पूरा सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।
The Municipal Corporation of Delhi, MCD, has sealed the basements of 13 civil services coaching institutes in old Rajendranagar area of the national capital. MCD officials said 3 coaching centers running in the basement have been closed and the government has ordered an inquiry. MCD took this major action after 3 students were killed on Saturday after the basement of a coaching institute got flooded in the area. After the mishap, several student organizations staged protests in old Rajendranagar against the Aam Aadmi Party rule in MCD. Student activists from Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad gathered in large numbers outside the residence of Delhi Mayor Shelly Oberoi as mark of protest. And now moving on to sports news. India have taken an unassailable 2-0 lead in the 3-match T20 series against Sri Lanka at the Pallikkale International Cricket Stadium. The men in blue defeated the host in the second T20 match by 7 wickets by DLS method on a rain-affected evening.
और अब आपको देंगे महानगरों का हाल. शुरुआत कर रहे हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से, जिनके बारे में जानकारी देंगी शगुन.
राइट, वी विल बिगिन विद चेन्नई. अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंट्रोड्यूसिंग आर्टिस्टिक थेरेपी सच एज विजुअल आर्ट्स, म्यूजिक, मूवमेंट एंड थिएटर इन द वर्क प्लेस कैन इम्प्रूव एम्प्लॉई परफॉर्मेंस. रिसर्चर्स डिस्कस अ कॉन्सेप्ट नोन एज वर्क फोर्स एजिलिटी विच हेल्प्स एम्प्लॉईज डील with organizational challenges with a more constructive approach rather than resistance to them. Janani M., the author and doctoral scholar in the Department of Management Studies, has said that art can help employees express their thoughts and behaviors, enhance their learning capacity, and enable thinking and understanding of complexities such as ethical dilemmas at work. The author also said that this might increase productivity as they become less focused on completing duties to the bare minimum and more eager to maximize their time for leisure activities unrelated to their jobs. Moving on to Bengaluru now, the Deputy Chief Minister and KPCC President D.K. Shivkumar yesterday appealed to his cabinet colleagues to visit flood-hit areas and attend flood relief works in Karnataka. Addressing them in Bengaluru yesterday, he said that heavy rains since the last few weeks have filled the reservoirs and the excess water is discharged. Several rivers in the state are in spate. Hence, he called upon the ministers to be with people in distress who have lost their property, crops and livestock to the natural calamity. He asked them to visit flood-affected areas in their constituencies and other areas and attend to people's problems. Being thankful for the good rains this year, he said rains have filled up the reservoirs but has also created flooding in some places. Heavy showers in Maharashtra and Western Ghats has flooded the Krishna River basin and several villages surrounding it have been vacated in Athani Taluk of Belagavi district in Karnataka. As per reports received yesterday, many bridges had submerged and the people and livestock from these parts were shifted to safer places. The river water had entered Gokak town yesterday and vehicle movement was stopped. The schools and colleges remained closed in the Belagavi district. Now moving on to Hyderabad, Telangana Chief Minister Revanth Reddy has said the state government will preserve the culture and heritage of the state and place them proudly on the world map. He participated in the completion ceremony of Qutub Shahi Heritage Park at Qutub Shahi Tombs in Hyderabad yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Reddy said it is an honor for him to participate in the completion ceremony of the restoration project, which was undertaken jointly by Telangana government and the Aga Khan Trust for Culture. The Chief Minister said Telangana is the hub of architectural and has witnessed the coexistence of people with different cultures. He said Qutub Shahi Heritage Park and 7 tombs are a testament of the Nizam dynasty's architectural skill and his government will preserve the culture and heritage of Telangana and place them proudly on the world map. So this was the latest buzz from these 3 metro cities, Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now, Sir Firozi, what about Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी, शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से. राजधानी में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने कल बाबरपुर विधानसभा में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस साल 64 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है. इस साल लगभग 7,74,000 से ज्यादा निःशुल्क पौधे वितरित किए जाएंगे. इस अवसर पर श्री राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जहां विकास वहां हरियाली थीम पर सभी विधानसभाओं में पौधारोपण और पौधा वितरण अभियान शुरू किया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी को पर्यावरणीय पहलों के लिए संगठन श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार डीएमआरसी को दिल्ली शहर में जल संरक्षण और जल संसाधनों के उचित उपयोग में उसके अथक प्रयासों के लिए ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन होगा। इस सेमिनार में हरियाणा के राज्यपाल और राज्य बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। सेक्टर 17 स्थित मॉडर्न स्कूल के ऑडिटोरियम में आज दोपहर 2 बजे इस सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। और अब चल रहे हैं मुंबई की ओर, जहां सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। श्री राधाकृष्णन राज्य के 24वें राज्यपाल होंगे। वे तमिलनाडु से भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं। उन्होंने कोयम्बटूर निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार लोकसभा के लिए चुना गया है और उन्होंने तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। श्री राधाकृष्णन 2004 में संयुक्त राष्ट्र में एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल का भी हिस्सा थे। महाराष्ट्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए आधिकारिक बातचीत के लिए संदेश मोबाइल ऐप का उपयोग करना जरूरी कर दिया है। यह कदम दुरुपयोग को रोकने और सरकारी कार्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ऐप को 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने लॉन्च किया था। वर्तमान में इसका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में 200 से ज्यादा सरकारी संगठन भी इस ऐप का उपयोग कर रहे हैं। एक खबर कोलकाता से भी है, जहां पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर्स आर्टिस्ट फोरम ने श्रमिकों, निर्माताओं और निर्देशकों से टॉलीवुड में आपसी विरोध खत्म करने की अपील की है। हाल ही में कुछ टेक्नीशियनों ने निर्देशक राहुल मुखर्जी के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। उधर कल डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने भी टेक्नीशियनों का बहिष्कार किया। वेस्ट बंगाल मोशन पिक्चर्स आर्टिस्ट फोरम ने दोनों से बातचीत करने को कहा है। फोरम ने एक प्रेस जारी किया है, जिसमें अध्यक्ष अभिनेता रंजीत मलिक ने कहा है कि वे मध्यस्थता कर सकते हैं। और श्रोताओं, अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। यहां की बात करें तो आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं मुंबई में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछार हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है।
नाउ टॉकिंग अबाउट चेन्नई, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 28 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have a generally partly cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
और अब बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक खेलों की, जहां पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन कल भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में भारत का खाता खोला। इसके साथ ही मनु भाकर निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और अब आपको बताएंगे कि पेरिस ओलंपिक 2024 में आज भारत का शेड्यूल क्या रहने वाला है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
28 July 2024 will be remembered forever as Manu Bakka's Day in Paris. What a stunning performance from the shooter who right from her teenage days had the talent and promise of an Olympic medal. And yesterday at the 33rd Olympiad in the French capital, she made sure that she entered the record books, bringing home a bronze medal for India and thus becoming the first ever woman from our country to clinch a medal in shooting at the Olympic Games. It was also our country's first medal of these games, and this promises to inspire other Indian athletes to do their best. In Indian action today, Ramita in the women's 10-meter air rifle and Arjun Babuta in the men's 10-meter air rifle are in contention for a medal today. In badminton, reigning Asian Games men's doubles champions Ranki Reddy and Chirag Shetty will be in action, while Ashwini Ponappa and Tanisha Krasto will feature in the women's doubles. Lakshya Sen will play Belgium's Julian Karaji later in the day. In hockey, India play Argentina, while in archery, India in the quarterfinals of the men's team competition. Late in the evening, Monica Batra will be challenged by Indian origin Prithika Pawde from France. Savio Di Noronha at Paris 2024.
श्रोताओं, अब वक्त है कि इतिहास की किताब को खोला जाए और आपको बताएं कि आज का दिन 29 जुलाई क्यों खास है और आज के दिन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई थी। शगुन आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे मनाया जा रहा है, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण और उनकी लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। इसका लक्ष्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता को समर्थन देना है।
Well, listeners, the International Tiger Day is a day which is dedicated to promoting a global system for protecting the natural habitats of tigers and raising public awareness and support for tiger conservation issues. This day has been effective in increasing online awareness about tigers through information searches also, right? It was first established in the year 2010 at the St. Petersburg Tiger Summit. This day highlights the alarming decline in tiger populations and the urgent need for conservation efforts, as the World Wildlife Fund, WWF, has reported a drastic decline in tiger populations. And it states that approximately 1 lakh tigers roamed the wild a century ago, while current estimates suggest there are only 4,000 remaining today. And this number continues to decrease.
और शगुन, भारत की बात की जाए तो हमारे देश में 2023 में कई रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि यहां राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या 3,167 थी, और देखा जाए तो ये संख्या बहुत कम है, बाघों की आबादी बहुत कम है हमारे देश में भी और दुनिया भर में भी। तो ऐसे में ये दिन और अहम हो जाता है। हमारे पास आज के दिन एक मौका है कि हम बाघों के आवासों यानी जंगलों की सुरक्षा करें, साथ ही इसका विकास कर दुनिया को बाघों की घटती संख्या के बारे में जागरूक करने पर ध्यान दें।
Well, the theme, let's talk about the theme of this International Tiger Day this year. The theme is for aiming to raise awareness about the conservation of tigers and the urgent threats that they face, such as habitat loss, poaching and human-wildlife conflict.
और भारत और दुनिया भर में बाघों की जनसंख्या कम होने के कई कारण हैं। इनमें से एक इलीगल हंटिंग है, अवैध बाजारों में बाघों के शरीर के हर हिस्से का कारोबार होता है। वहीं शगुन, पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए इस तरह के जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, जिस वजह से बाघों समेत और जो दूसरे जंगली जानवर हैं इनकी संख्या में बहुत कमी आई है। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि इनके जो प्राकृतिक वास है इनका नुकसान हो रहा है, इनके रहने की जगहों पर अब खेती वगैरह की जा रही है, जिसकी वजह से इनके पास रहने के लिए जगह ही नहीं बची है। ये अपने प्राकृतिक निवास स्थान के मेजॉरिटी हिस्से को खोते जा रहे हैं। इन निवास स्थानों को अधिकांशतः मानव गतिविधियों द्वारा नष्ट किया गया है। वनों और घास के मैदानों को कृषि जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर जब जगह की कमी के कारण बाघ इन खेतों वगैरह में घुस आते हैं तो उनका शिकार कर लिया जाता है। और अगर भारत और दुनिया भर में बाघों की संख्या को बढ़ाने और इनकी घटती संख्या को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की बात करें तो भारत में इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्य किए गए हैं। साल 1973 में भारत सरकार ने बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया और प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक संरक्षण योजना शुरू की जिसके तहत बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक सतत केंद्र प्रायोजित योजना है जो बाघ संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित टाइगर रिजर्व की संख्या 50 हो गई है। और शगुन, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में बाघ दिवस का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बाघ भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं और जंगलों के आसपास के गांवों में लोग बाघ के साथ सद्भाव से रहना सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाघ और मनुष्य के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने पर बाघों की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल्हाड़ी बंद पंचायत जनभागीदारी का एक ऐसा ही प्रयास है।
And now delving into the significance of this particular day, this day inspires us to take collective action to ensure the survival of tigers in the wild from threats which we are talking about, like poaching, habitat loss, human-tiger conflict, and the illegal wildlife trade which you also talked about. So this day is marked globally and awareness is raised through educational programs, media campaigns and conservation activities. And Sir Firozi, in the present year, stakeholders are focused on enhancing efforts to combat wildlife crime, expanded protected areas, promoting sustainable livelihoods for local communities and raising awareness about the plight of tigers.
Jee. और श्रोताओं, आज यानी 29 जुलाई को और क्या खास हुआ था, अब आपको देंगे इसकी जानकारी। तो 1858 में 29 जुलाई को ही यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने हैरिस संधि पर साइन किए थे।
In the year 1876, Indian Science Congress Association was established in Babazar Street of Calcutta. The association has a membership of more than 30,000 scientists. And in the year 1911, Mohun Bagan, he became the first Indian football team to win the IFA Shield.
साल 1921 में 29 जुलाई को ही जर्मनी में एडोल्फ हिटलर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नेता चुने गए थे।
In the year 1980, India won gold medal in hockey at Moscow Olympics.
साल 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन और भारत पर अधिकार करने के लिए अपने सैनिक इस क्षेत्र के दक्षिणी तट पर उतारे।
In 1981, wedding of Charles, Prince of Wales and Lady Diana Spencer was watched on television by millions of people worldwide.
साल 1949 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रेडियो पर प्रसारण शुरू हुआ।
In 1983, first pilotless aeroplane of India was tested successfully by Aeronautical Development Establishment near Kolar.
और साल 1987 में आज ही के दिन भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ था।
In 2008, the U.S. House of Representatives publicly apologized for the institution of slavery and Jim Crow laws that discriminated against African Americans.
और साल 2010 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 122 देशों के समर्थन से स्वच्छ पानी को मानवाधिकार बनाने का गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया। 2013 में 29 जुलाई को ही इराक में एक कार बम हमले में 44 लोगों की जान चली गई। और साल 2018 में व्लादिवोस्तोक में भारत के सौरभ वर्मा ने रशियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। श्रोताओं, अब याद करते हैं उन हस्तियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा हुए। तो शगुन, कहां से शुरू कर रहे हैं?
राइट, टुडे वी आर रिमेम्बरिंग रॉबर्ट शुमन। ही वाज अ जर्मन कंपोजर, पियानिस्ट एंड म्यूजिक क्रिटिक। ही कंपोज्ड इन ऑल द मेन म्यूजिकल जॉनर्स ऑफ द टाइम, राइटिंग फॉर सोलो पियानो, voice and piano, chamber groups, orchestra, choir and the opera. His works typify the spirit of the romantic era in German music. And listeners, for you we have this track, Traumerei, composed by him.
आज हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर की पुण्यतिथि है। ये बाजी, आर पार, मिस्टर एंड मिसेज, बचपन, सीआईडी, कागज के फूल, प्यासा जैसी गुरुदत्त की फिल्मों की एक समानांतर पहचान बने चोरी चोरी, नया दौर, मधुमती, मेरे महबूब, आनंद आदि फिल्मों में इन्होंने अपनी मीठी फुहार से दर्शकों को राहत दी। इन्हें 1959 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला फिल्म मधुमती के लिए। वहीं शिकार फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार दिया। इस मौके पर आइए सुनते हैं उनका ये गाना और उनकी एक फिल्म का ये डायलॉग।
सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी।
मुझे गम खिलाओ पिताजी, मुझे आंसू खिलाओ माताजी, ताकि मेरे जौहर पर निखार आए, न तब नहीं तो उधार आए, मगर आए।
Well, today it's also the birth anniversary of C. Narayan Reddy, the Telugu language poet, writer and critic. A poet of over 6 decades of standing, Dr. Reddy has to his credit more than 80 publications, which include poems, songs, lyrical dramas, ballets, essays, travelogues, ghazals, and in translation and literary criticism. His works have been regarded as trendsetters. His research work on modern Telugu poetry, assessing the influence of tradition and experiment on it, became a classic since its publication in 1967. He has nearly 3,500 film songs to his credit, and he was felicitated with Padma Shri in the year 1977 and Padma Vibhushan in the year 1992.
आज भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी पुण्यतिथि है। इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर काफी जोर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मेट्रोपॉलिटन विद्यालय सहित अनेक महिला विद्यालयों की स्थापना करवाई। इन्हीं की कोशिशों के नतीजे से नतीजा निकला कि विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 आखिरकार पारित हुआ। इन्होंने बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी संघर्ष छेड़ा।
Today it's also the birthday of Jerry Lee, the musician. He's best known as the lead vocalist, bassist and keyboardist for the rock group Rush. He joined the band at the request of his childhood friend Alex Lifeson, and Lee's solo effort, My Favorite Headache, was released in 2000. And for you listeners, we have the song Fly By The Night to listen to.
आज अरुणा आसिफ अली की भी पुण्यतिथि है। ये भारत की मशहूर महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए। अरुणा आसिफ अली ने सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश को आजाद करने के लिए अरुणा निरंतर कई वर्षों तक संघर्ष करती रही। इन्हें 1964 में लेनिन शांति पुरस्कार, 1992 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न दिया गया।
Today it's also the birth anniversary of J.R.D. Tata, Indian businessman and aviation pioneer. Under his guidance, several institutions were established to promote scientific, medical and artistic endeavors in India. He has received a number of awards, including the Padma Vibhushan, the Daniel Guggenheim Medal for Aviation, the United Nations Population Award and the Bharat Ratna.
आज ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सिंगिरेड्डी नारायण रेड्डी की जयंती है। ये अपनी पीढ़ी के सर्वाधिक जाने माने कवियों में से एक थे। ये 5 दशकों से भी अधिक समय तक काव्य रचना में लगे रहे। अब तक इनकी 40 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें कविता, गीत, संगीत, नाटक, नृत्य नाट्य, निबंध, यात्रा संस्मरण, साहित्य लोचन तथा गजलें आदि सम्मिलित हैं।
And today we're also remembering Jeremy Robbins, the American dancer, choreographer, film director, theater director and producer. He worked in classical ballet on stage, film and television. And he has numerous stage productions like On the Town, Peter Pan to his credit.
और आज बाबा साहेब मुरेश्वर पुरंदरे की भी जयंती है. ये मराठी साहित्यकार, नाटककार तथा इतिहास लेखक थे. ये शिवाजी से संबंधित इतिहास शोध के लिए प्रसिद्ध रहे. दोस्तों, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का. सरफिरोजी और शगुन को दीजिए इजाजत. कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की. और आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड. नमस्कार.